SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश आज के संक्षिप्त समाचार प्रशाली जैन के साथ। सिडनी की एक ईंट फैक्ट्री में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष नेता पीटर डटन ने सुपरमार्केट में कीमतें बढ़ाकर मुनाफाखोरी करने पर रोक लगाने के लेबर पार्टी के वादे की आलोचना की है। उन्होंने इसे पानी जैसा कमजोर करार दिया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वे सुपरमार्केट द्वारा जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलने को गैर कानूनी बना देंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम देश के मौजूदा प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता सुरक्षा कानून में कमियों को दूर करेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन यानी ACCC ने पिछले हफ्ते 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं लिया था कि सुपरमार्केट मुनाफाखोरी कर रहे हैं। विपक्ष नेता डटन का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 3 सालों में ऐसी 6 नीति समीक्षाएं शुरू की हैं, जिससे ये साबित होता है कि एंथनी अल्बनीज़ी सुपरमार्केट्स के सामने सख्ती से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ग्रीन्स पार्टी ने सुपरमार्केट की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने की लेबर की योजना का श्रेय खुद को दिया है और इसे नकल किया हुआ होमवर्क बताया है। पिछले साल ग्रीन्स ने एक बिल पेश किया था जिसमें सुपरमार्केट द्वारा मुनाफाखोरी पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन उस समय लेबर और लिबरल दोनों पार्टियों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। ग्रीन्स के सेनेटर निक मैककिम ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ग्रीन्स की वेबसाइट पर नीति के आइडिया ढूंढ रहे थे और इसी ढूंढ के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो वे मुनाफाखोरी को गैर कानूनी बना देंगे। वहीं ग्रीन्स नेता एडम बैंट का कहना रहा कि उनकी पार्टी का दबाव साफ तौर पर असर दिखा रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा है कि अगर वे मई में दोबारा चुने जाते हैं तो उनकी सरकार की 4 साल की तयशुदा संसद अवधि को लागू करने के लिए जनमत संग्रह कराने की कोई योजना नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले इस बदलाव की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अपने दूसरे कार्यकाल में वे इस मुद्दे को जनता के मतदान के लिए नहीं ले जाएंगे। पिछले साल विपक्ष नेता पीटर डटन ने कथित तौर पर कहा था कि इस विषय पर अल्बनीज़ी से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अब उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया है और आज दोपहर यानी 30 मार्च को एक बार फिर दोबारा ऐसा किया। दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स के मध्य नॉर्थ कोस्ट इलाके में बाढ़ के पानी में बह जाने की आशंका के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति बैटरी इलाके में उस कॉजवे पर यानी नदी पर बने रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे जो बारनाट नदी के उफान के आने पर डूब गया। ये इलाका टारी से लगभग 100 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। ऐसा माना जा रहा है कि लापता व्यक्ति के पास कैंप ग्राउंड से निकलने की कोशिश में एक SUV थी जिससे एक कैरावान बंधा हुआ था। इस कैंप ग्राउंड में करीब 22 लोग मौसम के कारण फंसे हुए हैं। हालांकि वे सब सुरक्षित हैं और बचाव के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के शीर्ष वैक्सीन अधिकारी ने नए स्वास्थ्य सचिव के टीकाकरण के प्रति रवैये के चलते इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर पीटर मार्क्स का कहना है कि रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने गलत जानकारी और झूठ को अपने फैसलों का अधिकार बना लिया है। डॉक्टर मार्क्स ने एक्टिंग कमिश्नर सारा ब्रेनर को एक पत्र भेजकर सूचित किया है कि वे 5 अप्रैल तक बायोलॉजिक्स इवोल्यूशन एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक पद से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि सचिव की चिंताओं को दूर करना अब संभव नहीं है। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो अब अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव हैं, ने पद संभालने के बाद से बचपन के टीकों की सुरक्षा को लेकर दोबारा जांच कराने का संकल्प लिया है, जबकि दशकों से ये प्रमाणित है कि ये टीके सुरक्षित हैं और इन्हें लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय भी दिया गया है। और अंत में खबरें भारत से। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तेजी से राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। शनिवार को भारत ने सबसे पहले 15 टन जरूरी राहत सामग्री यंगून पहुंचाई। इसके साथ कुछ घंटे बाद भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान नेपता में उतरे जिनमें NDRF के 80 कर्मी और अतिरिक्त सहायता सामग्री थी। जल्द ही 2 और C-17 सैन्य विमान 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस के साथ म्यांमार भेज दिए जाएंगे। अब तक भारत ने हवाई और समुद्री मार्ग से कुल 137 टन की राहत सामग्री भेजी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सुरक्षा प्रमुख मिन ऑंग ह्वांग से फोन पर बात की और संवेदना जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत एक निकट मित्र और पड़ोसी के रूप में इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हम प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, मानवीय सहायता और बचाव दल भेज रहे हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार के मुताबिक भूकंप में अब तक 1644 लोगों की जान जा चुकी है, 3408 घायल हैं और 139 अब तक लापता हैं। थाईलैंड सहित कई पड़ोसी क्षेत्रों में भी इसका असर महसूस किया गया है। इसी के साथ 30 मार्च 2025 के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। पीजे वृशाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।